किराने का सामान, महत्वपूर्ण दस्तावेज, कुरियर या कोई अन्य सामग्री हो। पार्सल वितरण की एक नई सेवा जरूरत का सामान लोगों के घरों तक आसानी से पहुंचा रही है। अहम बात यह है कि हे दीदी नाम की इस सेवा में हर जिम्मेदारी महिलाएं ही संभालती हैं जो दुपहिया वाहन चलाती हैं। प्रशिक्षण प्राप्त एजेंट के तौर पर काम करने वाली अधिकांश महिलाएं निम्न आय वाले या गरीब परिवारों से आती हैं और ये अवसर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम भी बना रहा है। इस पार्सल सेवा की शुरुआत करने वाली रेवती रॉय ने 2007 में फॉर्शी नाम से एक टैक्सी सेवा की भी शुरुआत की थी जिसमें सिर्फ महिला चालक थीं और वो सेवा विशेष रूप से महिलाओं के लिए ही थी। यूएन समाचार को रेवती रॉय ने बताया कि लॉजिस्टिक सेक्टर बड़ी संभावनाओं वाला क्षेत्र है और यही सोचकर उन्होंने ये कंपनी शुरू की। उनका कहना है कि इस सेवा के जरिए वो महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद कर रही हैं।
तो हे दीदी जो है हमने शुरू किया था 2003 में और तब हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि लॉजिस्टिक्स की जो इंडस्ट्री है वो बाय द टाइम इट वुड बी 2020 तब तक वो उसमें नंबर लिखे थे कि ये $220 बिलियन की इंडस्ट्री होगी। तो हमने सोचा कि अगर ये इतना बड़ा बिजनेस है और इसमें कोई महिला है नहीं तो हम क्यों ना एक पूल तैयार करें जो महिलाएं डिलीवरी पार्सल डिलीवरी कर सकते हैं। इसी वजह से हमने ये शुरुआत की है ए दीदी लॉजिस्टिक पार्सल डिलीवरी सर्विस ऑन टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर। हम अभी करीब 7 शहरों में हैं, 7 मुंबई, पुणे, बैंगलोर, नागपुर, लखनऊ, रांची, झारखंड, अमृतसर शुरू कर रहे हैं और कोलकाता।
इसमें एक जैसे आपने कहा कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो थी ही, लेकिन इसमें एक इसका आयाम, इसकी एक डायमेंशन ये भी है, इसमें महिलाएं ही मुख्य रूप से जिम्मेदारी संभालती हैं।
ये एक बिजनेस तो ऑब्वियसली है ही, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले ली वहाँ पे, लेकिन उससे भी बड़ी चीज जो है इसमें हम महिलाओं का सक्षमीकरण कर रहे हैं जहाँ पे वो ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके उन महिलाओं के लिए वो जॉब करती है टू व्हीलर और फोर व्हीलर चला के और जिसपे वो आर्थिक रूप से अपने पैर पे खड़ी हो रही है और ये अपॉर्चुनिटी उनको केवल ये प्लेटफॉर्म पे मिल रही है जहाँ पे सब महिलाएं आके यहाँ पे काम करती है एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट।
तो निश्चित रूप से उनको दूर भी जाना होता होगा डिलीवरी के लिए, क्या कभी किसी खास तरह की मुश्किलें, क्या उनमें कोई पैटर्न है जो उन्हें बाहर जाने में और ये काम पूरा करने में महसूस होता है?
ये हमारी जो सर्विस है और यहाँ पे हमारी महिलाएं जो हब पे जाती है ज्यादा करके हाइपर लोकल है। अगर वो एक हर एरिया में रहती है तो हम कोशिश करते हैं कि वो उसको वहीं का हब मिल जाए और वो हब से वो शायद 5 या 7 किलोमीटर ही जाने का उनका प्रयास होता है। ये हमारा बिजनेस जो है वो B2B है तो B2B बिजनेस में हमने ऐसा तय किया है कि ये हाइपर लोकल होगा और आसपास की महिलाएं जो यहाँ पे रहती है ताकि उनको दिक्कत ना हो क्योंकि वो नजदीक रहती है वो ज्यादा लोड ले पाती है क्योंकि उनकी जो पेमेंट होती है ना वो पर पार्सल होती है तो अगर वो 70 पार्सल एक दिन में करे तो उनको उस हिसाब से ज्यादा पैसा मिलता है।
अभी फिलहाल आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितनी महिलाएं इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा?
350-380 महिलाएं ऑलरेडी काम कर रही है ऑन द रोड एंड अबाउट 2000+ लड़कियां हमारे इधर अभी ट्रेनिंग ले रही है ताकि 2019 में हमारा प्रयास है कि हम 5000 महिलाओं को ऑन द रोड ला।
अब हम थोड़ा पीछे लौटना चाहेंगे कि आपने फॉर्शी करके एक टैक्सी सर्विस भी शुरू की थी महिलाओं के लिए जो महिलाएं ही चलाती थी। जब शुरुआत हुई थी तो कैसे शुरू हुआ और क्या सोचकर आपने उस काम को मूर्त रूप देने की कोशिश की थी?
ये मैंने कंपनी शुरू की 2007 में फॉर्शी करके महिलाएं टैक्सी सर्विस महिलाओं के लिए और मैं खुद एक टैक्सी ड्राइवर थी 8-10 महीने के लिए। मैंने खुद टैक्सी चलाई है ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई और मैंने इसको काफी बढ़ाया तो वो 20 तक की गाड़ियां हो गई थी और 20 लड़कियां हो गई थी तभी मैंने ये कंपनी सेल कर दी है। मैंने ये कंपनी ILNSS को बेची है तो आई एम एंटरप्रेन्योर हु सोल्ड माय कंपनी टू ILNSS।
तरह से आपकी शुरुआत थी इस क्षेत्र में आने की। हम कई बार देखते हैं यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स आती हैं उसमें ये कहा जाता है कि महिलाओं को खासतौर पे आर्थिक क्षेत्र में व्यवसाय के क्षेत्र में आने में कुछ दिक्कतें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपका अपना निजी अनुभव के आधार पे क्या आप कुछ हमसे साझा करना चाहेंगी?
पहला चैलेंज तो मतलब एक शुरू करना एक मेल डोमिनेटेड फील्ड में एक टैक्सी ड्राइवर बनना और एक टैक्सी एक कंपनी खोलनी वो ही सबसे बड़ा चैलेंज था। उसके अलावा आर्थिक चैलेंज तो है ही, मतलब आर्थिक चैलेंज इतना ज्यादा कि अगर और अब तो ये जो बिजनेस है वो हाई कैपेक्स बिजनेस है, मतलब एक टैक्सी को इस पे लाने के लिए, रास्ते पे लाने के लिए यू नीड एटलीस्ट 5-6 लाख रुपीज। तो वो हमें लोन नहीं मिलता था, क्रेडिट बैकग्राउंड नहीं होता था, तो वो पैसे का तो चैलेंज है ही। तीसरी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चैलेंज जो है वो है कि महिला ड्राइवर को मैं कहाँ से लाऊं, कि महिला ड्राइवर तो है ही नहीं, कमर्शियल टैक्सी ड्राइवर तो की ही नहीं। तो हमें उन लोगों को वहाँ जाके मोबिलाइजेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए वहाँ बस्तियों में जाके हमें उनको और उनके फैमिलीज को कन्विंस करना पड़ता था कि आप आइए, यहाँ एक अच्छा मौका है, आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं, आप ड्राइवर भी बन सकते हैं, आप इतना पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये सब करने के लिए बहुत टाइम लगा। आज मैं 12 साल के बाद बोल सकती हूँ कि हमने आज बनाया है यहाँ, और आज वो मोबिलाइजेशन हो या कैपेसिटी बिल्डिंग हो थोड़ा सा आसान है, लेकिन पहले जो 3-4 साल थे बहुत ही डिफिकल्ट थे। और एक महिला जब बाहर घर से बाहर आती है तो उसको इतना सोचना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, घर में खाना कौन बनाएगा, और ये लड़कियां सब बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके घर में कोई हेल्प नहीं होती थी उनके लिए
जी।
तो उनको घर में बच्चों को छोड़ के एक नाविन्य से काम करना और सीखना, एक गाड़ी सीखना बहुत मुश्किल होता था, बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। मुश्किल अभी भी है, लेकिन नाउ वी आर अ लिटिल मोर एक्सपीरियंस।
आपने बताया पूरे व्यवसाय को जमाने में आपको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और अब हम इस तरह की बातें सुनते हैं जिसमें चुनौतियों के बावजूद जब सफलता मिलती है तो ये देखकर बहुत अच्छा भी लगता है। तो जब ये सफलता की कहानियाँ जब दूसरी महिलाएं सुनेंगी कि मुश्किल हैं लेकिन सफलता भी मिलना संभव है, कोई ऐसा आप संदेश देना चाहें या अपनी कोई ऐसी बात आप बाकी हमारे ऑडियंस से शेयर करना चाहें?
तो हर महिला से यही बोलूंगी कि सपने देखो और जागते हुए सपने देखो। सोते हुए तो सब लोग सपने देखते हैं, लेकिन जागते हुए सपने देखो, क्योंकि अगर वो सपने आप देखने लगोगे तो ही आपको कुछ करने का प्रयास करोगे। हम सपने में सोचते हैं कि हम बिलियनर बनना चाहिए या मुझे एजुकेशन में ये करना चाहिए, कुछ भी हो एक सपना होता है
जी।
तो सपने देखना कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नामुमकिन इसी में कुछ भी नहीं है। अगर मैं आज ये काम पे पहुंच सकती हूँ तो मुझे लगता है कोई भी औरत ये मुकाम पे पहुंच सकती है। कोई भी औरत क्या, कोई भी पहुंच सकता है, वो मर्द हो या औरत हो, लेकिन एक एक परसिवियरेंस होनी चाहिए, एक ड्रीम होना चाहिए, पैशन होना चाहिए और करने की इच्छा जरूर होनी चाहिए।